हरे कृष्णा। कृपया अपने अपने मोबाइल फोन्स आप बंद कर दीजिएगा। पहले कोई गलती करने से लोगों को वनवास में जाना पड़ता था, अभी हम लोग वन में हैं और इसी वन में रहना चाहेंगे, और जिनका मोबाइल फोन बजेगा उनको दंड दिया जाएगा कि उनको शहर में भेजा जाएगा, वन में नहीं न रह के। ये वृंदावन है तो कथा के बीच में अक्सर मोबाइल फोन बजते रहते हैं, कथा में विघ्न और विक्षेप होता है। महाभारत में श्री कृष्ण, इस विषय की चर्चा पिछले दो दिनों से चल रही है। कथा समाप्त कल यहां हुई थी कि अर्जुन ने द्रुपद महाराज के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करके द्रौपदी देवी का हाथ जीत लिया। मत्स्य यंत्र को लक्ष्य बनाकर सही भेद कर दिया अर्जुन ने तीर से, जबकि और कोई भी नहीं कर पाया था। वहां वापस कुंती महारानी के पास जाने पर, क्योंकि कुंती महारानी को पता नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज क्या लाए हैं साथ में, उन्होंने कहा जो भी लाए हो आपस में समान रूप से बांट लो। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत विचार किया, भाइयों में चर्चा हुई और अंततः निर्णय ये हुआ कि द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से होना है। श्री कृष्ण भी वहां पर चले आए बलराम जी के साथ में। जब श्री कृष्ण ने अपनी पहचान कर दी पांडवों को, तो पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े आनंद से वो कहने लगे कि हे कृष्ण, हमारा सौभाग्य है कि आप यहां पर आए हो, परंतु ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि हम पांडव हैं, जबकि हम पहले कभी मिले नहीं हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, देयर इज ट्रांसलेशन गोइंग ऑन, यू कैन सिट देयर, इट इज यस, इफ देयर इज एनीबॉडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी हियर ऑन द मेन साइड, लेडीज साइड ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन, यस ओके। तो युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपको पता कैसे चला कि हम सब पांडव हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आग जब जलती है तो भले आग ढकी हुई क्यों न हो, परंतु आग के लक्षण तो दिखाई पड़ते हैं। वैसे अर्जुन के सिवाय और कौन व्यक्ति है इस धरातल पर जो कि इस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकता था। जैसे ही मैंने और मेरे दाऊजी बड़े भाई बलराम जी ने देखा आप पांचों को, हम समझ गए कि आप ही पांडव होंगे। और जब तीर की निशानी बराबर ठीक से लग गई तो हमारा जो संशय था, हमारी जो धारणा थी, वो बिल्कुल सही है, हम निष्ठापूर्वक जान गए, इसलिए हम आपके पीछे पीछे आए हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अभी हमें जाना होगा, नहीं तो सभी लोग आएंगे और फिर जो इस रहस्य है, रहस्य का खुलासा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बलराम जी वहां से फिर चले गए। उधर धृष्टद्युम्न महाराज पीछे पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने आश्चर्य की भावना से देखा कि अंदर क्या क्या चल रहा था, और देखा कि द्रौपदी देवी कितनी प्रसन्नता से, हसमुख चेहरे से वो माता कुंती से उपदेश आदि ग्रहण कर रही है। और जब कुंती महारानी ने द्रौपदी देवी को बताया था कि अभी आप भोजन जो भी पकाओगे या जो भी भिक्षा में मिलेगा, पहले ब्राह्मणों के लिए जो दान में देना होता है वो अलग से रख के फिर बाकी के जो भोजन है उसके दो भाग करना, एक भीमसेन को एक हम सब के लिए। और ऐसे करने के बाद सब विश्राम कर गए तो धृष्टद्युम्न वापस द्रुपद महाराज के पास पहुंचे। द्रुपद महाराज काफी चिंतित थे, वैसे आनंद की अवस्था में थे कि मेरे पुत्री से जिन्होंने भी विवाह किया है वो अवश्य बहुत योग्य है, परंतु परिचय नहीं पता था कि ये कौन है। आखिर ये स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जानना चाहेगा कि मेरी बेटी का विवाह किससे हो रहा है, व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो द्रुपद महाराज सोच रहे थे कि क्या कहीं ये अर्जुन तो नहीं है। और उसी समय धृष्टद्युम्न वहां पर आए और धृष्टद्युम्न में भी वही बात कही कि मुझे लगता है कि वारणावत में बच के अब ये अवश्य पांडव ही हैं जो कि यहां पर आए हैं। तो द्रुपद महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और युधिष्ठिर महाराज को निमंत्रण दिया गया, धृष्टद्युम्न को भेजा गया। धृष्टद्युम्न ने आकर युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आपकी पहचान क्या है। उन्होंने कहा तो हम तो बस साधारण ब्राह्मण हैं, यूं ही कह दिया। बाद में जब प्रस्ताव हुआ कि विवाह होना है तो अपने भाइयों के साथ, माता के साथ कांपिल्य नगर में फिर से गए। वहां द्रुपद महाराज को अपनी सही पहचान करा दी। द्रुपद महाराज बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, और फिर उन्होंने कहा विवाह की योजना करनी चाहिए अभी। तो बताइए, अर्जुन के साथ विवाह होना है, किन के साथ विवाह होना है? जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम पांचों के साथ होना है तो द्रुपद महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये कैसे संभव है? हे युधिष्ठिर महाराज, आप तो धर्मराज हैं, ये तो पाप होगा, कलंक होगा कि एक स्त्री एक पति के साथ रह के फिर दूसरे पति के साथ जाए, ये तो ठीक नहीं लगता मुझे। तो बड़े हंसमुख चेहरे से, बड़े शांति से युधिष्ठिर महाराज ने समझाया। ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं इस संदर्भ में उनके बारे में भी बताया और कहा कि वैसे कुंती महारानी तो सत्यवचनी है, उनकी सत्यता का पालन करना चाहिए। कुंती महारानी ने कह दिया था कि जो भी आप लाए हो अभी वो समान रूप से बांट लेना। तो कुंती महारानी कहने लगी कि हे राजन, अभी आप ये बताइए कि समस्या का हल कैसे निकाला जाए, नहीं तो पाप का कलंक मुझ पर पड़ेगा, मेरे पुत्रों पर पड़ेगा। उस समय व्यासदेव जी भी वहां पर पधारे। व्यासदेव जी जब आए तो व्यासदेव जी ने सबसे पूछा कि आपका मत क्या है, क्या करना चाहिए? द्रुपद महाराज ने कहा, देखिए ऐसी समस्या है। तो सबने अपने अपने मत व्यक्त किए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा उनका मत, द्रुपद महाराज ने कहा कि मेरे मन में ऐसे संशय है। तब व्यासदेव जी द्रुपद महाराज को एकांत में ले गए एक स्थान में, और बंद कमरे में फिर द्रुपद महाराज को व्यासदेव जी ने द्रौपदी का इतिहास बताया, पूर्व जन्म का। थोड़े ही समय पहले, राधाष्टमी के पहले, पुरुषोत्तम मास था इस साल में, और उस समय आपने अवश्य द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनी होगी, जिसमें कि द्रौपदी एक ऋषि की कन्या थी, उनकी पुत्री थी। पिता के देहांत के बाद, क्योंकि वो अभी तक कन्या थी, विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने शिवजी की उपासना की, तपस्या की बहुत। शिवजी आए, दुर्वासा मुनि के प्रति इस कन्या ने अपराध किया था। वैसे दुर्वासा मुनि ने कहा था कि पुरुषोत्तम मास का पालन करना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, जो कि जीवन का ध्येय है। परंतु ये कन्या, इस कन्या ने दुर्वासा मुनि की बातों को नहीं माना, सोचा कि ये अधिक मास तो मलमास है, इसका तिरस्कार किया जाता है, यहां कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कन्या मेधवी ऋषि की पुत्री भक्ति के नियमों से, भक्ति के तौर तरीकों से परिचित नहीं थी, भक्ति और कर्मकांड में अंतर नहीं जानती थी। तो खैर, दुर्वासा मुनि ने कहा, तुमने मेरे प्रति अपराध किया है, मैं उसको तो भूल जाऊंगा, परंतु तुमने पुरुषोत्तम मास के प्रति जो अपराध किया, इसका दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। इसके बारे में मैं भी, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। आगे चल के वो बहुत कुरूप बन गई, और भी कोई विवाह की संभावना नहीं थी। शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी प्रकट हुए। ये लड़की इतनी उत्तेजित हो गई शिवजी का दर्शन करके। शिवजी ने पूछा कि क्या चाहते हो, तो उत्तेजना में कहने लगी, मैं पति चाहती हूं, मैं पति चाहती हूं, ऐसे 5 बार कह दिया, क्योंकि पति के लिए तो वो ऐसे प्रार्थना कर रही थी। तो क्योंकि 5 बार उसने ऐसे कह दिया, तो शिवजी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे 5 पति होंगे। तो उस समय द्रौपदी इस लड़की ने कहा, अरे रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, मैं तो एक पति चाहती हूं, 5 पति नहीं चाहती हूं। परंतु शिवजी ने कहा, जो मेरे मुख से शब्द निकले हैं वो सत्य रहेंगे, वो मैं बदल नहीं सकता, परंतु ठीक है, मैं इस बात को अगले जन्म तक टाल के रख सकता हूं, अधिक से अधिक इतना कर सकता हूं। और इसलिए अगले जन्म में फिर इस लड़की का नाम हुआ द्रौपदी। तो व्यासदेव जी ने ये इतिहास द्रुपद महाराज को बताया और कहा कि न केवल कुंती महारानी की सत्यता की बात है ये, परंतु ये शिवजी के शब्दों को स्वीकार करने की बात भी है। जब शिवजी जैसे महाजन ऐसे वचन कहते हैं तो उसका पालन करना चाहिए। और ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि ये जो धर्म है और धर्म के सिद्धांत हैं, ये बहुत जटिल विकट होते हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है कि धर्म के नियमों को कैसे समझना चाहिए। कभी कभी किसी उच्च कोटि, किसी उच्च कारण के लिए निम्न श्रेणी के सिद्धांतों को या नियमों को त्यागा जा सकता है, और इसलिए ऐसे परिस्थिति में ऐसे करना उचित रहेगा। और साथ साथ में जो 5 पांडव हैं उनका भी परिचय मैं आपको करा देता हूं। फिर व्यासदेव जी ने द्रुपद महाराज को 5ों पांडवों के पूर्व जन्मों की जानकारी दे दी कि अपने पिछले जन्मों में ये वास्तव में इंद्रदेव के अवतार थे, और व्यासदेव जी के कृपा से द्रुपद महाराज को आंखों के सामने दृश्य दिखाई पड़ा, ये 5ों पांडवों का अपने पूर्व जन्मों में, अपने किरीट आदि तेजस्वी शरीरों के साथ साथ स्वर्गलोक में निवास करने वाले सारे इंद्रों के दर्शन हो गए, जो पहले के ये सब पांडव थे। अब द्रुपद महाराज का हृदय शांत पूरी तरह से हो गया। अब क्योंकि हम श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय यह भी कहना उचित होगा कि वास्तव में यही कथा द्रौपदी के बारे में, जो कि व्यासदेव जी ने गोपनीय रीति से द्रुपद महाराज को बताया था, वो स्वयं श्री कृष्ण ने आगे चल के अनेक वर्षों के बाद, जबकि द्यूत क्रीड़ा में हार कर पांडव वनवास में गए थे और काम्यक वन में रहा करते थे, तो उस समय श्री कृष्ण वहां आए थे और उन्होंने ही ये कथा पांडवों को सुनाई थी। सत्यभामा देवी के साथ में श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए आपको इतने कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। और द्रौपदी देवी के कष्टों का कारण ये है, और उन्होंने इतिहास बताया। तो खैर, वो तो बाद की बात है, परंतु यही कथा थी जो आगे चल के श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई वन में। तो अब द्रुपद महाराज का मन के मन में निश्चय हो गया कि हाँ, यही सही रास्ता है। तो फिर बड़े बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। पहले दिन युधिष्ठिर महाराज का, दूसरे दिन भीमसेन का, तीसरे दिन अर्जुन का, इस तरह से 5 भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ एक एक दिन पर होता गया, और श्री कृष्ण वहीं पर रहे पांडवों के साथ में। उधर हस्तिनापुर में खबर पहुंची, विदुर जी आए धृतराष्ट्र के पास अपने भाई को खुशखबरी सुनाने के लिए। विदुर जी के लिए खुशखबरी थी, धृतराष्ट्र के लिए खुशखबरी नहीं थी। तो विदुर जी ने कहा कि हे राजन, देखिए कुरुवंशी सफल हो गए हैं। अभी राजा द्रुपद के साथ हमारा संबंध जुड़ गया है। तो धृतराष्ट्र जानते थे कि सारे कुरुवंशी राजकुमार वहां पर गए हैं, अर्थात दुर्योधन और उनके भाई। धृतराष्ट्र ये तो नहीं जानते थे कि वारणावत में लाक्षाग्रह के अग्नि में पांडव बच गए हैं और वो वहां पहुंचे हैं कांपिल्य नगर में, और वास्तव में अर्जुन है जिन्होंने कि द्रौपदी का हाथ जीत लिया है। तो ये सोच करके दुर्योधन ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया है, बहुत खुश हो गए धृतराष्ट्र और कहने लगे कि मेरे पुत्रों को बुलाया जाए, सारे राज्य में खुशियां मनाई जाएं। तब विदुर ने कहा नहीं नहीं, पांडवों के साथ ऐसे हुआ है, पांडव द्रौपदी का हाथ जीते हैं। तब धृतराष्ट्र के मन में दुख तो हुआ, परंतु बाह्य रूप से उन्होंने अपने दुख को व्यक्त नहीं किया, कहा कि बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। दुर्योधन और कर्ण वहां पर थे। जब विदुर जी उस कमरे को छोड़ सभागृह को छोड़कर चले गए, तो दुर्योधन बड़े क्रोधित होकर अपने पिता से कहने लगे, जब दुर्योधन और कर्ण अभी अभी बस आए थे, कि पिताजी हमारे शत्रुओं का की ऐसी जीत हो गई है और आप ऐसे खुश लग रहे हैं। आप विदुर जी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, पांडवों ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया, पांडवों की शक्ति तो बढ़ जाएगी और हमारी हानि होगी, तो हमें तो कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचाना चाहिए, नहीं तो इनकी शक्ति तो बढ़ती जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो वत्स? फिर दुर्योधन ने कहा कि कुछ न कुछ ऐसे षड्यंत्र रचाना चाहिए, पांडवों को मार देने का प्रयास करना चाहिए, या तो फिर ऐसे धन आदि के प्रलोभन से द्रुपद महाराज को हमारे पक्ष में ले आना चाहिए, या कोई ऐसे सुंदर महिलाओं के द्वारा द्रौपदी का जो विश्वास है या स्नेह है पांडवों में उसको तोड़ देना चाहिए। तो ऐसे कई प्रस्ताव दुर्योधन ने रखे। तो कर्ण वहां पर उपस्थित थे। यद्यपि कर्ण अब ऋणी हो चुके थे दुर्योधन के प्रति, क्योंकि दुर्योधन ने उनको अंगराज राजा बना दिया था, एक क्षत्रिय का पद प्रदान कर दिया था, फिर भी कर्ण को यह सब अच्छा नहीं लगता था। कर्ण वास्तव में एक क्षत्रिय थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो भी होना है, मामला निपटाना है, क्षत्रियों की तरह आमने सामने युद्ध में निपटाना चाहिए। ये सब छल कपट पसंद नहीं था कर्ण को। तो कर्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो कह रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता, हमें सीधे सीधे पांडवों से युद्ध करना चाहिए, उनको हरा देना चाहिए, और फिर आपस में चर्चा जब हो रही थी तो धृतराष्ट्र ने कहा कि यह संभव नहीं होगा और ठीक नहीं होगा, प्रजा का प्रेम अवश्य पांडवों के साथ भी है, वैसे फिर भी यहां पर भीष्म विदुर आदि आए हैं, उनकी सलाह लेते हैं, द्रोण भी यहां पर आए हैं, अभी फिर से आ गए थे। तो भीष्म, द्रोण और विदुर तीनों ने ही एक जैसे सलाह दिया कि हे राजन, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, न कोई षड्यंत्र रचाना चाहिए, न कोई छल कपट करना चाहिए, न आपको युद्ध करना चाहिए, ये भी आपके पुत्र ही हैं, जैसे कि दुर्योधन और उनके भाई आपके पुत्र हैं, इसलिए समान दृष्टि रख के, समभाव रख के इनकी भी रक्षा आपको करनी चाहिए। तो इनको आप राज लौटा दीजिए और धर्म के पक्ष में आप रहिए। तो धृतराष्ट्र ने फिर उनकी बात मान ली, और मानने के बाद ये सब तो चले गए। फिर विदुर जी को उन्होंने भेज दिया कि आप जाइए कांपिल्य नगर में और वहां पे हमारा संदेश दीजिए कि हम बहुत प्रसन्न हैं पांडवों के इस जीत पर, और इस बात से भी हम प्रसन्न हैं कि कुरुवंशों का संबंध द्रुपद महाराज जैसे राजा से हुआ है। तो विदुर को भेज दिया धृतराष्ट्र ने। विदुर तो बाहर आगे चलने के लिए तो बहुत आतुर थे। पहली बात तो ये है कि वो तो बहुत प्रसन्न थे कि अब पांडव बच गए। उनको पता था कि वारणावत से तो वो निकल गए हैं बच के, परंतु आगे चल के फिर वो कहां गए, इतने समय तक वो कहां थे, विदुर जी को भी पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। तो बहुत प्रसन्न थे और पांडवों से मिलना चाहते थे। साथ साथ एक और गुह्य कारण था, विदुर जी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो वो उनको पता था कि श्री कृष्ण भी कौंपल्य नगर में अपने प्रिय भक्तों के साथ में रहेंगे, पांडवों के साथ में रहेंगे, तो वो भी श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। तो फिर वहां पर निकल पड़े और जैसे निकले तो धृतराष्ट्र के द्वारा बहुत सारे उपहार भेंट आदि जो भेजे गए थे और उनका संदेश भी उन्होंने पांडवों को दिया और वहां पांडवगण बहुत प्रसन्न हुए, द्रुपद महाराज बहुत प्रसन्न हुए। और फिर संदेश तो ये था कि हम बहुत प्रसन्न हैं, अब जबकि विवाह हो चुका है तो कृपया पांडवों को वापस हस्तिनापुर भेजिए, क्योंकि उनको राजगद्दी संभालनी है, ये तो इन्हीं का धाम है। तो द्रुपद महाराज ने विदुर जी से कहा, आप सही कह रहे हैं कि वैसे हस्तिनापुर में अधिकार है पांडवों का और वहां जाना उनके लिए उचित है, परंतु मेरे लिए ये ऐसे कहना उनको ये ठीक नहीं रहेगा। तो आइए पांडवों के शुभ चिंतक श्री कृष्ण को पूछ लेते हैं। श्री कृष्ण यहां पर बैठे हैं और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ और कौन व्यक्ति होगा हमें सलाह देने के लिए इस बारे में। तो फिर श्री कृष्ण से पूछा गया, वैसे युधिष्ठिर महाराज ने तो द्रुपद महाराज से कहा कि हे महाराज, आप ही हमारे पिता तुल्य हैं, अभी जैसे आपका आदेश होगा हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। फिर भी द्रुपद महाराज ने कहा श्री कृष्ण से पूछा जाए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, पांडवों को वापस लौट के जाना चाहिए, अपने राज्य का अधिकार स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भी द्रुपद महाराज हम सब में वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो द्रुपद महाराज ने फिर कहा, मेरी अनुमति है, आप वापस चलिए हस्तिनापुर। तो फिर पांडवगण बड़े धूमधाम से द्रौपदी देवी के साथ, कुंती महारानी के साथ में वो हस्तिनापुर की ओर चले और द्रौपदी देवी भी वहां पर उनके साथ में थी, क्योंकि द्रुपद महाराज तो जानते थे कि द्रौपदी देवी भी श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, पांडव भी भक्त हैं, तो श्री कृष्ण भी उनके साथ वापस चले। बल्कि जब जुलूस जा रहा था वापस कौंपल्य नगर से हस्तिनापुर, युधिष्ठिर महाराज को जुलूस के सामने रखा, उस सारे जुलूस के प्रमुख श्री कृष्ण थे और वहां विदाई तो हुई द्रौपदी देवी की, काफी दुख के साथ द्रुपद महाराज और उनकी महारानी ने विदाई की द्रौपदी देवी की। धृष्टद्युम्न शिखंडी दोनों भी वहां पे उपस्थित थे। तो थोड़े समय के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ और द्रौपदी और कुंती देवी के साथ पहुंचे हस्तिनापुर और भरी सभा में धृतराष्ट्र ने कह दिया कि हम बहुत प्रसन्न हैं, सारे हस्तिनापुर में तो खुशियां मनाई जा रही थीं और सारी प्रजा एक उत्सव का ही माहौल जैसे हो गया था वहां पर। और भरी सभा में धृतराष्ट्र ने अपने प्रसन्नता को व्यक्त किया, हालांकि ये वास्तव में प्रसन्न तो थे नहीं, फिर भी उनको कहना पड़ा, ऐसे एक औपचारिकता की बात थी, अगर वो ऐसा नहीं कहते तो ठीक नहीं होता। और फिर उन्होंने घोषणा की भरी सभा में, जबकि भीष्म, द्रोण, श्री कृष्ण, पांडव, कौरव सब बैठे थे वहां पर, तो धृतराष्ट्र ने घोषणा की कि आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आधा राज्य मैं अब युधिष्ठिर को और पांडवों को दे रहा हूं और युधिष्ठिर अब राजा बनेंगे खांडव प्रस्थ के। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की तो भीष्म और विदुर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु उन्होंने कुछ शब्द कहे नहीं। श्री कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान आ गई। श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि खांडव प्रस्थ क्या था। वैसे पहले कौरवों का राज्य वहां हुआ करता था, राजधानी भी हुआ करती थी वहां पर, परंतु हुआ ये कि एक बार एक कौरवंशी राजा ने किसी एक ऋषि के प्रति अपराध किया तो उस ऋषि ने श्राप दे दिया था कि ये जो प्रांत है आपका खांडव प्रस्थ, ये एक मरुभूमि और जंगल बन जाएगा, और उस श्राप के फलस्वरूप अब ये खांडव प्रस्थ जो है केवल मरुभूमि और जंगल जैसे था, बंजर भूमि थी, उपजाऊ खेत नहीं था, वहां न कोई खेती हो सकती थी, न वहां कोई ऐसे अच्छे सुविधाएं थी, न वह कोई लोग निवास करते थे, एक भी बस्ती उस सारे प्रांत में नहीं थी। तो श्री कृष्ण सोचने लग गए, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि आधा राज्य हम पांडवों को दे रहे हैं, ये तो सही है, परंतु किस प्रांत को दिया है उन्होंने। खैर, हंसते रह गए श्री कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण की ओर देखा, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अब युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव देखिए, व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के हृदय में तनिक भी कोई गुस्सा नहीं आया, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं आया, कोई असंतुष्टि नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज भी भली भांति जानते थे कि खांडवप्रस्थ क्या है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और सोचने लगे और कहने भी लगे, धृतराष्ट्र महाराज तो हमारे राजा हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और वो हमारे भलाई के लिए आदेश दे रहे हैं, शिरोधारी, हम स्वीकार करते हैं। तो बिल्कुल कोई ऐसे गलत भावना या द्वेष युधिष्ठिर महाराज के हृदय में नहीं रही, और फिर उन्होंने घोषणा की कि हाँ अवश्य हम स्वीकार करते हैं इस बात को। और वहां पे फिर आगे श्री कृष्ण पांडवों के साथ चले गए। अगले दिन राज्याभिषेक हुआ वहीं हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र ने घोषणा की कि आज से खांडव प्रस्थ के महाराज हैं युधिष्ठिर। राज्याभिषेक के बाद बड़े धूमधाम से फिर युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ और अन्य जितने भी उनके सहायक आदि थे, धौम्य ऋषि आदि, उनके साथ वो चल पड़े खांडव प्रस्थ की ओर। खांडव प्रस्थ है वो उत्तर के भाग में कुरुक्षेत्र के पास में, तो श्री कृष्ण भी उनके साथ में थे। तो वहां पर जाके उन्होंने देखा कि ऐसे तो बंजर भूमि है, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, कोई खेती नहीं हो सकती, रहने लायक कोई स्थान नहीं है, कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। फिर श्री कृष्ण ने विचार किया कि यहां इंद्रदेव को बुलाना चाहिए, और व्यासदेव जी भी उसी समय पर यहां पर आ गए, उसी स्थान में आ पधारे। तो व्यासदेव जी के निर्देशन में एक यज्ञ संपन्न किया गया, और श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार इंद्रदेव को निमंत्रण किया गया। इंद्रदेव चले आए और इंद्रदेव से अनुरोध किया गया कि आप यहां आपके देवलोक के अमृत को छेड़कर यहां पे आप इस भूमि को पुनः उपजाऊ बनाइए, इसको एक अच्छी भूमि बनाइए, अब जबकि ये बंजर भूमि है। तो इंद्रदेव ने फिर उस अमृत को छिड़क दिया उस भूमि के ऊपर, और पुनः वो हरे भरे खेत आदि सब वहां पे उत्पन्न, हरियाली वगैरह सब वहां पे आने लगी। साथ साथ में श्री कृष्ण ने निवेदन ये भी किया कि अब आप कोई ऐसे उपयुक्त निवास स्थान बनाइए पांडवों के लिए। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र हैं, विश्व सम्राट होने के योग्य हैं, वैसे अधिकार तो इन्हीं का है, इसलिए जैसा आप ठीक समझें एक निवास स्थान बनाइए। तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं विश्वकर्म को लगाता हूं इस काम में। विश्वकर्म आए, उन्होंने एक ऐसे बढ़िया स्थान बनाया जिसका वर्णन शायद हम कल करेंगे, उस राजमहल का। तो ऐसे ऐसे ऐश्वर्यों से युक्त था ये राजमहल कि स्वर्ग लोक में भी शायद ऐसा कोई राजमहल नहीं पाया जाता था, और इतना ऐश्वर्य आ गया बहुत कम समय में। तो धीरे 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 से वैश्य लोग आने लगे, क्षत्रिय पांडव तो थे ही, थोड़े ब्राह्मण भी तो आ गए थे, धौम्य ऋषि आदि उनके साथ में, अब वैश्य रहे, तो वैश्य ने देखा कि यहाँ खेती अच्छी हो सकती है, भूमि अच्छी है, तो वहां पर आए। साथ साथ में वाणिज्य आदि करने के लिए भी अनेक और वैश्य आए, और इस तरह से कम समय में ही एक बहुत ही बड़ा शहर वहां पर निर्माण हो गया और उसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ, क्योंकि इंद्र देव के द्वारा ये स्थापित हो गया था। ये बंजर भूमि का परिवर्तन हुआ था, हरियाली अब हो गई यहां पर, तो इंद्रप्रस्थ में फिर यहां पर रहने लगे सारे पांडव और राज्य करने लगे। इससे हम जान सकते हैं कि जहां श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वहां किसी चीज की कमी नहीं होती है। वहां सारे ऐश्वर्य आदि सब आ जाते हैं अपने आप में। तो श्री कृष्ण अब थोड़े समय पांडवों के साथ में रहे और फिर वहां वो चले गए। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि का स्वागत के युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ में। नारद मुनि देखने लग गए कि चकाचौंध हो गई ऐश्वर्य को देखकर, और फिर युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि हे राजन, आपको एक कहानी सुनाता हूं कि पहले दो असुर हुआ करते थे जिनका नाम था सुंद और निसुंद, और दोनों भाई थे और इतने गहरी मित्रता इन दोनों के बीच में थी कि इनमें कोई किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। केवल ऐसे भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी मृत्यु यदि होनी है तो केवल एक दूसरे के हाथ में, और ये इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं के नाक में दम बन गए। अब तहस नहस करने लगे देवलोक में, तो देवता विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने युक्ति सूझी, तिलोत्तमा नाम के अप्सरा को भेज दिया। तो सुंद ने कहा, ये मेरी पत्नी होगी, तुम्हारी बहन होगी। निसुंद ने कहा, नहीं, मेरी पत्नी होगी, तुम्हारी बहन होगी। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी और देवता खुश हो गए। तो नारद जी कहने लगे, देखिए, आप पांचों भाई, आपके बीच में बहुत प्रेम का संबंध है, लेकिन आपकी पत्नी एक है, तो कहीं आपके साथ भी ऐसे गलत फहमियां आपस में न हो, इसलिए कोई ऐसे समझौता आप सबके बीच में होना अनिवार्य है, आप ऐसे कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि की बातों को स्वीकार की, पांचों भाइयों ने मिलकर नारद मुनि के सामने समझौता कर लिया। समझौता था ये कि हर एक भाई वो द्रौपदी देवी के साथ में एक वर्ष रहेंगे, फिर दूसरे भाई, फिर तीसरे भाई, ऐसे पांचों भाई एक के बाद एक 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 साल तक द्रौपदी के साथ में रहेंगे, और यदि किसी भाई ने इस समझौते का तोड़ दिया, उल्लंघन किया, तो उसे 12 वर्ष वनवास में जाना होगा, और इन 12 वर्षों में फिर द्रौपदी का संग नहीं करना है उन्हें। तो पांचों भाइयों ने स्वीकार कर लिया नारद जी के सामने। अब हुआ ये कि एक बार एक ब्राह्मण वहां पर आए और बड़े पीड़ित अवस्था में राजमहल के बाहर रो रहे थे और जोर जोर से बोलते हुए कह रहे थे कि क्या पांडवों के राज में भी कोई धर्म नहीं है? क्या आजकल के राजा ऐसे हुए हैं कि केवल कर लेते हैं प्रजा से और प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं? और इतने सारे डकैत आए, हमारे प्रति अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और पांडव कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनकी हाहाकार सुनकर अर्जुन दौड़ के चले गए, ब्राह्मण से पूछा कि बात क्या है, और समझ गए कि वैसे कोई डकैत आए थे, ब्राह्मण की गायों को चोरी करके ले गए थे। तो अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो अभी चलता हूं। तो अभी बाहर जाने के लिए, युद्ध करने के लिए तो उनके अस्त्र चाहिए थे उनको, लेकिन दैव से हुआ ये कि जिस कमरे में अर्जुन का गांडी बाण आदि धनुष आदि था, उसी कमरे में युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी देवी के साथ में थे। अब समझौता किया था कि पांडवों को, भाइयों को दूसरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए जबकि वो द्रौपदी देवी के साथ में है। अर्जुन के लिए बड़ा धर्म संकट हुआ, अब क्या किया जाए? एक और यहां ब्राह्मण का कष्ट है, और बड़ा पाप होगा यदि हमने ब्राह्मण की रक्षा नहीं की तो महाराज युधिष्ठिर के पवित्र नाम के ऊपर कलंक लग जाएगा, बड़ा अपराध हो जाएगा ये। और दूसरी ओर समझौता तोड़ना ये भी अच्छा नहीं है, फिर 12 वर्ष वनवास में जाना होगा। तो अर्जुन ने सोचा कि वनवास में जाना सही है लेकिन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए। तो फिर अंदर गए, युधिष्ठिर महाराज की अनुमति तो ले ली अंदर जाने के समय, परंतु समझौता तो टूट गया था, वचन तोड़ दिया अर्जुन ने और बताया कि ऐसे ऐसे बात है और इसलिए मुझे मेरे अस्त्र चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने हसमुख चेहरे से अनुमति दे दी, अर्जुन ने अपने अस्त्रों को उठा लिया, ब्राह्मण के साथ गए, डकैतों को हरा दिया, गायों को लौटा दिए उस ब्राह्मण को और वापस आए। जब वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया। फिर अर्जुन ने घोषणा की कि हे राजन, मैंने मेरा वचन तोड़ दिया है, इसलिए हमारे समझौते के अनुसार अब मैं 12 वर्ष वनवास में जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अरे अर्जुन, देखो परिस्थिति कुछ ऐसी थी, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो ये बड़ा पाप होता। ब्राह्मण की रक्षा करनी थी तुम्हें, तुम तो अपने कारण के लिए नहीं आए थे, सेवा के लिए आए थे तुम। और वैसे भी पद्धति ये है कि यदि छोटा भाई अपने पत्नी के साथ बैठा हो तो बड़े भाई को अंदर नहीं जाना चाहिए, परंतु क्योंकि छोटा भाई पुत्र के समान होता है तो यदि वो अपने बड़े भाई के कमरे में जाए जबकि वो पत्नी के साथ बैठा है, इसमें कोई कलंक नहीं, कोई खराबी नहीं है, इसमें दोष नहीं है। परंतु जितना भी युधिष्ठिर महाराज उनको समझाने का प्रयास क्यों न करें, अर्जुन ने एक नहीं मानी। आप ही तो सत्य वचनी है हे राजन, और आप मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे सत्य को त्याग देना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अर्जुन फिर वहां से निकल पड़े और जैसे ही निकले तो ऊपर उत्तर दिशा में गंगा की ओर चले गए और वहां पर गंगा द्वार या हरिद्वार में आ पहुंचे। वहां अपने साथियों के संग में थे वो, और हरिद्वार में तप आदि करने लगे क्योंकि ये गंगा द्वार है। जब वो गंगा में स्नान कर रहे थे तो नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को देखा, आकर्षित हुई, जल के भीतर से खींच के नागलोक ले गईं, अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, अर्जुन ने विवाह किया उलूपी से। लंबी कहानी है, हम तो केवल संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि विषय से थोड़ा सा हटकर है, परंतु एक क्रम ठीक ठाक रहे इसलिए हम ये संक्षेप में बता रहे हैं। फिर आगे चल के उलूपी का एक पुत्र हुआ अर्जुन के द्वारा, उनका नाम था इरवान। उलूपी ने ये एक वरदान दिया अर्जुन को कि जल के भीतर में आपकी हार कभी नहीं हो पाएगी, जल के प्राणी आपके प्रति को भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो खैर अंततः फिर अर्जुन आगे निकल पड़े, शुरू की थी यात्रा उत्तर से और अब पूर्व दिशा की ओर चले गए। गंगा के तट पर चलते चलते अनेक तीर्थ स्थानों में गए, अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए, ऐसे होते होते फिर कलिंगा पहुंचे उड़ीसा के पास। वहां से होकर फिर वो पुनः उत्तर और पूर्व की ओर गए, मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में चित्रंगदा नाम के राजकन्या थी, उनसे मिले। चित्रंगदा विवाह करना चाह रही थी अर्जुन से, वहां भी विवाह हुआ और उनके पुत्र बभ्रू वहन के जन्म होने तक वहीं पर रहे अर्जुन। चित्रंगदा के पिता जो राजा थे मणिपुर के, उन्होंने अर्जुन से एक वचन लिया कि यहां जो पुत्र होगा मेरी पुत्री का, वो यहीं रहेगा और यहीं राज्य संभालेगा। तो अर्जुन ने स्वीकृति प्रदान कर दी और ऐसे चलते चलते फिर अर्जुन आए और अंततः पूर्व कोने से लेकर अब पश्चिम कोने में पहुंचे, प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र में जब यहां पर आए तो उन्होंने द्वारका में सोचा कि अब श्री कृष्ण तो यहां पर हैं, तो अब श्री कृष्ण को खबर पहुंचानी चाहिए। और श्री कृष्ण जब पता चला कि वैसे आए हैं यहां पर अर्जुन, तो बाहर आए द्वारका के, अर्जुन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, आलिंगन किया, स्वागत किया अर्जुन का। और बातों बातों में फिर अर्जुन ने अपनी यात्रा की खबर दी, कौन से स्थानों में वो गए थे। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए इन बातों को सुनकर। और फिर आगे चल के जब चर्चा हो रही थी, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जो कि उनके प्रिय मित्र थे, उनसे अपने हृदय की बात व्यक्त की। अर्जुन के हृदय की बात क्या थी कि वो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे। अब गद नाम के एक यदुवंशी थे जो कि द्रोणाचार्य के शिष्य थे, जबकि पांडव और कौरव भी वहां द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो गद के द्वारा अर्जुन ने सुभद्रा देवी के गुणों का वर्णन खूब सुना था और तब से उनके मन में आकर्षण था और वो इच्छा थी कि मुझे सुभद्रा से विवाह करना है। तो श्री कृष्ण तो इस बात को अच्छी तरह से पहले से ही जानते थे कि अर्जुन के मन में बात क्या है। अंततः आखिर श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में स्थित हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो, तुम जो कह रहे हो कि स्वयंवर आयोजित किया जाए और फिर स्वयंवर में सुभद्रा अपने वर को चुन ले, ये तो साधारण अवस्था में ठीक है, परंतु समस्या ये है कि यदि सुभद्रा ने तुम्हें नहीं चुना तो फिर क्या होगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए मेरा मत है, श्री कृष्ण कहने लगे, कि तुम जबरदस्ती अपहरण कर लो सुभद्रा का, और ये भी क्षत्रियों के समाज में सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, बलपूर्वक हरण कर लेना किसी कन्या को, उसको पत्नी बनाना, तो तुम इस रास्ते को स्वीकार कर लो। वैसे अफवाहें तो सब जगह द्वारका में फैली हुई थी कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं, और किसी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं था। श्री कृष्ण को पसंद नहीं था, वसुदेव और देवकी को पसंद नहीं था, उग्रसेन महाराज को नहीं था, यहां तक कि द्वारका निवासियों को भी पसंद नहीं था। परंतु क्या करते, बलराम जी तो बलराम जी हैं। अब कैसे सामने से जाके कहा जाए कि आपका जो विचार है वो सही नहीं है। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, बलपूर्वक यदि मैं ऐसे उठा के ले जाऊंगा तो फिर आगे चल के कैसे बलराम जी का सामना करूंगा, बलराम जी तो आप भोले हो जाएंगे, वो तो सब तहस नहस कर डालेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बलराम जी को संभाल लूंगा। वैसे ये महाभारत की जो कथा है बड़े संक्षेप में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी पाया जाता है, अध्याय संख्या 46 में संक्षेप है वर्णन यहां, फिर भी बात वही है। तो खैर, अब चातुर्मास से प्रारंभ होने ही जा रहा था, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी सलाह अर्जुन ये है कि तुम थोड़ा धीरज रखो, सब्र करो, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ऐसे हमारे बड़े भाई बलराम जी की योजना है और इस समय तुम्हारा जो परिचय है वो गुप्त ही रखना, किसी कोई जान न ले कि तुम अर्जुन हो। और थोड़े समय में चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है तो तुम यहीं पर रहो और ऐसे करो कि एक सन्यासी का वेश धारण कर लो। सन्यासी का वेश धारण करोगे और फिर द्वारका में आओगे, और वैसे भी चातुर्मास का पावन समय है जबकि साधु जो है वो भ्रमण नहीं करते हैं, एक ही स्थान में रहते हैं, और बलराम जी तो साधुओं को अपने घर में निमंत्रण करना पसंद करते हैं, भोजन आदि प्रसाद खिलाना पसंद करते हैं उनको। तो बार बार बुलाएंगे बलराम जी और सुभद्रा देवी को बुलाएंगे सेवा करने के लिए, तो फिर आप दोनों का संबंध वहां हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ये षड्यंत्र रचा रहे हैं। वैसे अर्जुन से कह रहे हैं कि आप सन्यासी का वेश धारण कीजिए, फिर ऐसे कीजिए। वैसे देखिए, इसीलिए तो जो लोग कृष्ण भक्त नहीं है, जो भगवद गीता और श्रीमद भागवत को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वो ऐसे श्री कृष्ण के कार्यों को गलत समझने लगेंगे। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं श्री कृष्ण, अर्जुन को कह रहे हैं सन्यासी बनो और किसी स्त्री का, वो भी अपने ही बहन का अपहरण करके ले जाओ, कैसे होगा ये सब। वैसे श्रीमद भागवत में और एक कथा आती है कि जब पृथु महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे तो इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि इंद्रदेव को यह डर था कि 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के बाद पृथु महाराज इंद्र की गद्दी को स्वीकार करने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो इंद्रदेव को सदैव अपने राज गद्दी की चिंता रहती है। तो फिर इंद्रदेव ने सोचा कि किसी न किसी तरह से कोई विघ्न इस 100वें अश्वमेध यज्ञ मुझे डालना ही चाहिए। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है का जो अश्व होता है घोड़ा, उसको चोरी कर लिया और भाग गए। पृथु महाराज के पुत्र ने देखा कि कोई घोड़े को चोरी करके ले जा रहा है, उनके पीछा कर दिया। इंद्रदेव ने देखा कि ये बहुत तेजस्वी नवयुवक अस्त्र धारण किए हुए मेरा पीछा कर रहा है, तो घोड़े को त्याग कर वहां से निकल पड़े। तो घोड़े को जीत कर ले आए पृथु महाराज के पुत्र, इसलिए उनका नाम हुआ विजिताश्व, विजित अश्व, जो घोड़े को जीत कर ले आए हैं। दोबारा इंद्र आए, इस बार सन्यासी का वेश धारण करके आए, इस बार भी घोड़े को चोरी कर लिए और बार बार पृथु महाराज के पुत्र घोड़े को वापस लेकर आए। अंततः पृथु महाराज को इतना क्रोध आया कि वो तो विध्वंस करने वाले थे, परंतु उस समय ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी पृथु महाराज को, आप तो भक्त हैं, आपको ये सब प्रतिष्ठा आदि से क्या मतलब है। इंद्रदेव हैं भक्त, लेकिन अपने नंदन कानन आदि से आ सकते हैं, तो वो ठीक है, थोड़ा भोग चाहते हैं, रहने दीजिए, आप तो शुद्ध भक्त हैं, इंद्रदेव शुद्ध भक्त नहीं है। तो वैसे आपको फिर इस 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिष्ठा से क्या लेना देना है, आप रहने दीजिए, 99 हुए हैं ना आप, ये भी तो कम थोड़ी है, तो ठीक है आप ऐसे रहने दीजिए। और इंद्रदेव से कहने लगे, अब ठीक है आप भी क्षमा याचना मांग लीजिए। तो दोनों के बीच में फिर ठीक ठाक संबंध बन गए ब्रह्मा जी के द्वारा। और ब्रह्मा उस समय से, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये प्रथा, गलत प्रथा जो है प्रारंभ हो गई कि ढोंगी साधु रहते हैं जो केवल साधु का वेश धारण करते हैं, परंतु कुछ गलत काम के लिए, चाहे अपने दाल रोटी के लिए कर रहे हो, या कोई चोरी करने के लिए कर रहे हो, या कोई और चीज करने के लिए कर रहे हो। इसलिए होता यह है कि कलयुग में लोगों की श्रद्धा टूट जाती है, क्योंकि सन्यासी या साधु इत्यादि के वेश में लोगों को देखते हैं, और यदि ये लोग फिर गलत काम करते हैं तो लोग सोचते हैं फिर अब साधु में विश्वास नहीं किया जा सकता, तो धर्म ही के पथ को ही छोड़ दें। वैसे एक बार एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति थे, वो तीर्थ स्थान में जा रहे थे घोड़े के ऊपर सवार होकर, तो रास्ते में एक भिक्षुक देखा उन्होंने, साधु का वेश पहनकर वहां पे बैठे थे। तो जैसे बैठे तो उन्होंने भिक्षाम देही कह रहे थे, तो उन्हें घोड़े से उतर के उस भिक्षुक को थोड़ा सा दान दे दिया। और उस समय उस भिक्षुक ने किया क्या कि उठे जल्दी से, घोड़े के ऊपर कूदे और बैठ के चल पड़े, और ये बेचारे धनी आदमी खड़े रह गए, देखते रह गए कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो भिक्षा देने के लिए उतरा और ये मेरे घोड़ा और घोड़े के ऊपर जितना भी धन है सबको लेकर चला गया। तो पहले एक दो क्षण तो बस चकाचौंध रह गए, बाद में चिल्लाने लगे, अरे रोको रोको, धन चाहिए ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, लेकिन एक निवेदन है मेरा। क्या निवेदन है आपका? रुके घोड़े के साथ में थोड़ी दूरी पर, कहने लगे देखो चोरी करना है तो करो, परंतु कम से कम साधु का वेश पहने हो, पहन के नहीं करो, नहीं तो लोगों की जो श्रद्धा है धर्म में वही टूट जाएगी। तो खैर तो ऐसे इंद्रदेव के ने ऐसे एक गलत परंपरा शुरू कर दी, एक गलत प्रथा शुरू कर ली, जिसे आगे चल के भौतिक सृष्टि में बहुत नुकसान हुआ है। तो ये दोष आरोप श्री कृष्ण के ऊपर लगाया जा सकता है कि फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अर्जुन को करने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया। तो कई बार श्री कृष्ण के प्रति आरोप लगाया जाता है कि वो कभी अनैतिक कार्य करते हैं या छल कपट करते हैं, परंतु हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए कि नीति ये है क्या। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नीति अर्थात धर्म के सिद्धांत, और इनको कौन बनाते हैं, ये तो भगवान की वाणी है। और किन के लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए बनाया गया है, बद्ध जीवों के लिए बनाया गया है, ये भगवान अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं। तो जिन नियमों को भगवान ने बनाया है मनुष्य समाज के लिए, धर्मशास्त्र आदि, वो नियम भगवान पर लागू नहीं होते हैं। और केवल अज्ञानी लोग हैं जो अपने ही दोषों का आरोप, अपने ही कमियों का आरोप श्री कृष्ण के ऊपर लगाते हैं, और अपने दुनिया के अनुभवों का आरोप श्री कृष्ण के ऊपर लगाकर सोचते हैं कि जिस तरह हम भी साधारण सांसारिक नीति के अंतर्गत हैं और बद्ध हैं, बाध्य हैं पालन करने के लिए, वैसे श्री कृष्ण को भी बाध्य होना चाहिए। और यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको दोषी ठहराते हैं, उनकी निंदा करते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्री कृष्ण लीला को समझने के पहले या सुनने के पहले हमें कृष्ण तत्व समझ लेना चाहिए। कृष्ण तत्व समझेंगे तब कृष्ण लीला न केवल समझेंगे परंतु ये बहुत रसमय हो जाएगा। बल्कि ये एक विरोधाभास जैसे लगता है कि जितना ज्यादा श्री कृष्ण संसार के नियमों को तोड़ते हैं, और या ऐसे प्रतीत होता है कि वो तोड़ रहे हैं, उतना ज्यादा आनंद कृष्ण भक्तों को आता है। इसलिए तो श्री कृष्ण का परिकीय रस जो है ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दुनिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो बड़ा अनैतिक कार्य है, अन्यों की महिलाओं से पत्नियों से के साथ में नृत्य करना आदि, और ऐसे कितने सारे चीजें हैं, चोरी करना। जब भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं तो गुणगान किया जाता है कि ये माखन चोर है। जब हम कोई चोरी करते हैं तो दंडनीय हो जा दंड दिया जाता है। हम यदि किसी की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करें दुनिया की दृष्टि से तो दंडनीय एक कार्य है ये, और सही है, दंड मिलना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन जब श्री कृष्ण करते हैं तो कृष्ण भक्त मानते हैं कि यह सबसे ऊंची लीला है, भगवान की रास लीला। वैसे बहुत गुह्य और सूक्ष्म तत्व हैं ये सब, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण स्वराट है, जो चाहे वो कर सकते हैं, कौन है उनको पूछने वाला। फिर भी जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीलाओं को रचाते हैं, ऐसे कार्य करते हैं अश्रद्धालु लोगों को भ्रमित करने के लिए और श्रद्धालु लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए, ताकि श्रद्धालु लोगों की रुचि बढ़ जाए और उनको कथा और भी रसमय लगने लगे। तो जब श्री कृष्ण ऐसे कोई कार्य करते हैं तो भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता है कि देखो हमारे भगवान कितने आश्चर्यजनक है, कितने अद्भुत से अद्भुत कार्य करते हैं, ऐसा भी करते हैं भगवान। तो कभी कभी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए भी भगवान ऐसे कार्य करते हैं। खैर, किसी एक कार्य के द्वारा भगवान अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो अब ऐसे सलाह तो दे दी श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो अर्जुन जटाय आदि बन के अभी सन्यासी के रूप में आए, त्रिदंड सन्यास दंड आदि था हाथ में। तो द्वारका निवासियों ने सत्कार आदि किया उनको, बलराम जी ने सुन ली बात कि यहां एक सन्यासी आए हैं, बहुत तेजस्वी हैं। तो बलराम जी ने सोचा कि उनको घर में निमंत्रित करना चाहिए प्रसाद के लिए, तो प्रसाद के लिए बुलाया और सुभद्रा से कहा तुम भी कृपा प्राप्त करो, अभी कन्या हो, अच्छे पति मिल जाए तुम्हें। चलो इनकी सेवा करो। तो सुभद्रा देवी वहां पर आई, सेवा कर रही थी, देखा एक दृश्य से देखी तो ये सन्यासी तो है लेकिन कुछ अलग से है, और जैसे सन्यासी दिखाई पड़ते हैं उस तरह के सन्यासी तो नहीं लग रहे हैं ये। फिर भी अब कैसे कहती सन्यासी है, फिर भी अर्जुन और सुभद्रा के बीच में फिर इशारों के द्वारा इतना स्पष्ट हो गया, संबंध स्थापित, हृदय की भाषा चली दोनों के बीच में और संबंध स्थापित हो गया वहीं के वहीं एक दूसरे के मन में। अब कई बार बलराम जी ने निमंत्रण दिया उस चातुर्मास के दौरान और अर्जुन तो वहां गए सन्यासी के रूप में, और फिर चातुर्मास समाप्त होने जा रहा था तो 4 महीने हो गए। फिर श्री कृष्ण ने कहा अब कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, को कार्तिक पूर्णिमा में भगवान विष्णु के मंदिर में रथ यात्रा होती है यहां पर प्रभास क्षेत्र में द्वारका में, तो इस समय सारे द्वारका यदु वंशी जो हैं वो सब इकट्ठे होते हैं, सारे द्वारकावासी वहां पर आ जाते हैं, तो उस ये सही समय होगा। कोई अपेक्षा नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे साहस करे कि सुभद्रा को इन सब के बीच में से उठाकर ले जाए, वो भी यदुवंशियों के बीच में, मेरे होते हुए बलराम जी के होते हुए, कोई ऐसे सोच भी सकता है, ऐसे विचार भी किसी के मन में नहीं आएगा, इसलिए यही समय होगा। ये लो मेरा रथ मैं तुम्हें देता हूं, और सुग्रीव और शैब्य ये मेरे 2 घोड़े हैं इनको भी ले लो। तो देखिए श्री कृष्ण ने कितना साथ दिया अर्जुन का, योजना भी कृष्ण की थी साथ साथ सुविधा भी प्रदान कर दी श्री कृष्ण ने। और फिर सुभद्रा देवी को वैसे प्रजा में कोई देखता नहीं था, ऐसे प्रथा थी कि जो राजकुमारियां हैं वो सबके सामने नहीं आते थे, आम आदमी महारानियों को और विशेष करके कन्याओं को जो राजकुमारियां थी उनको देख नहीं सकते थे, केवल विवाह के समय या कोई ऐसे विशेष अनुष्ठान जब होता था उस समय वो केवल देखते थे। तो सुभद्रा देवी अपने सहेलियों के साथ में वहां पर आई मंदिर में, और अचानक देखा कि पीछे रथ के चक्कों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, क्या बात है, मुड़ के देखा तो वहां अब अर्जुन है लेकिन सन्यासी के वेश में नहीं है, अब तो अपने क्षत्रिय वेश में आए हैं, योद्धा के वेश में, अपने गांडी बाण धारण करके आदि सब आए, गांडी वहां अभी तक मिला नहीं था क्षमा वो बाद में आएगा। तो खैर अपने अस्त्रों को साथ में लेकर वो चल पड़े और सीधे सुभद्रा देवी को उठा लिया और रथ में बिठाकर चल पड़े हस्तिना इंद्रप्रस्थ की ओर। और वहां तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हलचल मच गया, और जब खबर पहुंची तो जो मंत्री थे उन्होंने अपने वाद्यों के द्वारा द्वारका के बीच में आके घोषणा की युद्ध का समय है, सारे योद्धा आइए आइए, तो सारे योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेके आए कि, और ये सारी गर्जना सारे द्वारका में सुनाई दे रही थी कि मेरे अस्त्र कहाँ है, मेरा कवच कहाँ है, मेरे घोड़े ले आओ, तो ऐसे आवाजें क्षत्रियों की सुनाई दे रही थी, ऐसे इन्होंने कैसे साहस की ये सब करने के लिए। उस समय सभा बुलाया गया, तो सभा में सब बैठ रहे थे तो बलराम जी तो आग बबूले हो गए थे, सारे क्षत्रिय वो भी तो बहुत क्रोधित हो गए थे, सब बहुत चिल्ला रहे थे, जोर जोर से उनकी गर्जना हो रही थी वहां। और उस समय श्री कृष्ण केवल शांति से बैठे थे वहां पर, अपने आसन ग्रहण करके बैठे थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। तो बलराम जी ने ये इस गर्जना के बीच में काफी समय तक गर्जना चलती रही, श्री कृष्ण चुपचाप बैठे रहे, और फिर बलराम जी ने देखा कि श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, फिर सबसे कहने लगे अरे चुप हो जाओ, देखते नहीं हो कि जनार्दन तो चुप बैठे हैं, जनार्दन को भी पूछना चाहिए कि क्या मत है इनका। फिर सारे लोग शांत हो गए और फिर बलराम जी ने श्री कृष्ण की ओर मुड़ के कहा कि हे जनार्दन देखो ये कैसे साहस की अर्जुन ने, यदि हमारे पास सामने से आके अपनी इच्छा व्यक्त करता, यदि सही ढंग से आता तो हम बड़े खुशी से दे देते भी, शायद हम दान भी दे देते, लेकिन इस तरह से हम सबके बीच में से हमें अपमानित करके ले जाने से आप ये हमें सहन नहीं होगा, हम तो युद्ध करेंगे। अभी उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको याद रहेगा। तो फिर श्री कृष्ण हल्की मुस्कान लेकर बात करने लगे, धीरे धीरे अपने सौम्य वचनों से सारे वातावरण के तापमान को नीचे करने लगे और कहने लगे कि देखिए, बलराम जी को संबोधित करते हुए कहने लगे कि द्रौपदी देवी या सुभद्रा देवी को इस तरह से दे देना, अर्जुन सोच रहे होंगे कि ऐसे खरीदना तो ठीक नहीं है ना, आपका देना इस दृष्टि से ठीक हुआ होता ना अर्जुन का लेना ऐसे ठीक हुआ होता। और आप तो जानते ही हो कि अर्जुन कितने श्रेष्ठ हैं, अर्जुन जैसे वीर और शूर योद्धा तो इस पूर्ण विश्व में नहीं है, बल्कि हमारा कितना सौभाग्य होगा कि हमारी बहन का विवाह अर्जुन जैसे शूर वीर योद्धा से हुआ है। और वैसे आप तो जानते हो कि अभी ये तो विश्व सम्राट हैं और हमारा संबंध विवाह के द्वारा इनके साथ स्थापित हो जाए, वैसे खून का संबंध तो है ही, लेकिन वो विवाह के साथ भी संबंध स्थापित हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और आप सब तो जानते हैं कि क्षत्रियों के लिए ये तो सबसे श्रेष्ठ विवाह का तरीका है, राक्षस विवाह कहते हैं उसको। तो ऐसे मीठी मीठे बातों से धीरे 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 से बलराम जी का क्रोध जो है कम हो गया और जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, सारे क्षत्रिय जो कि युद्ध के लिए तैयार थे, अब उनका क्रोध भी शांत हो गया और सब लोग ध्यान से श्री कृष्ण को सुनने लगे। और श्री कृष्ण बोलते गए और फिर सभी लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर ली। और फिर बलराम जी ने कहा तो ठीक है, अर्जुन को बुलाया जाए वापस और बड़े आदर सत्कार से बुला के धूमधाम से यहां विवाह मचाएंगे। तो फिर अर्जुन को वापस बुलाया गया, एक संदेश भेजा गया, कोई व्यक्ति गए पीछे, अर्जुन वापस आए सुभद्रा के साथ में और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। परंतु हरण करने के पहले युधिष्ठिर महाराज को एक संदेश अर्जुन ने भेजा था, श्री कृष्ण ने सहायता तो की ही थी कि युधिष्ठिर महाराज का आशीर्वाद मिल जाए कि हम ऐसे कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के बलराम के क्रोध के कारण को युद्ध वगैरह हो जाए तो युधिष्ठिर महाराज को तैयार पता होना चाहिए और आशीर्वाद भी लेना चाहिए ऐसे कार्य करने के पहले। युधिष्ठिर महाराज ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी और अर्जुन ऐसे करने वाले हैं ये वसुदेव और देवकी को भी पता था। तो खैर ऐसी लीला हुई और बड़े धूमधाम से अर्जुन और सुभद्रा देवी का विवाह हुआ और फिर बहुत ही ऐश्वर्य के साथ साथ यदुओं ने विदाई कर दी अर्जुन और सुभद्रा की। दोनों पहुंच गए इंद्रप्रस्थ में और वहां पे अब पूरे 12 वर्ष बीत चुके थे, पांडवों के बीच में संबंध बहुत घनिष्ठ था, बहुत गहरा संबंध हुआ करता था प्रेम का, और सभी चारों भाइयों को लग रहा था कि अब अर्जुन कब आएंगे। विरह की भावना बहुत तीव्र थी, द्रौपदी देवी, कुंती महारानी, सबके हृदय में अर्जुन के प्रति तीव्र विरह की भावना थी। और अब जबकि अर्जुन लौट के आ गए, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब ये भी खबर आ गई कि अर्जुन अपने रानी को लेकर आए हैं, सुभद्रा देवी को लेकर आए हैं। तो जैसे ही अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो सीधे जाके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज से मिले, अन्य भाइयों से मिले, धौम्य ऋषि आदि सबसे मिले और फिर आके द्रौपदी के सामने आए। अब द्रौपदी को गुस्सा आ गया था, द्रौपदी ठीक से बात नहीं कर रही थी, तो अर्जुन प्रयास कर रहे थे कि उनको सांत्वना दे दें। कहने लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हे देवी, हालांकि मेरी और एक रानी है, लेकिन आपके प्रति मेरा जो स्नेह है वो तो वैसे का वैसे बना रहेगा। परंतु द्रौपदी देवी ने कहा कि ये कैसे संभव है, ये नहीं संभव है। और बहुत समझाने के बाद भी द्रौपदी देवी मान नहीं रही थीं। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि क्या किया जाए, तो वापस सुभद्रा देवी के पास गए और एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुभद्रा देवी से कहा कि तुम वृंदावन के गोपी का वेश पहन लो, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि द्रौपदी देवी श्री कृष्ण की कितनी ऊंची और श्रेष्ठ शुद्ध भक्त है, और विशेष करके वृंदावन के भाव में द्रौपदी देवी तो है, बस उनको स्नेह है वृंदावन के लीलाओं से। तो अर्जुन की ये योजना थी कि सुभद्रा देवी को इस वेश में देखकर, गोपी वेश में देखकर द्रौपदी कृष्ण का स्मरण करेंगी, कृष्ण के कारण इस महिला के प्रति भी एक स्नेह उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा ठीक ठाक। तो फिर सुभद्रा देवी को गोपी का वेश पहनाया गया, लाल रंग के रेशम वस्त्र थे, और थोड़ी दासियां आईं द्रौपदी देवी के पास कि एक और दासी हैं जो आपकी सेवा में रहना चाहती हैं, उनको बताया ना कि ये कौन है। तो सुभद्रा देवी अंदर आईं और बड़े सौम्य और नम्र व्यवहार से द्रौपदी देवी के सामने आकर कहने लगी कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, और मुझे जो भी आप आदेश देंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, आपकी दासी ही समझिए मुझे। तो द्रौपदी देवी समझने लगी ये कि तो कोई विशेष स्त्री है, कोई साधारण दासी तो है नहीं, फिर भी इसका व्यवहार इतना सौम्य है, इतना नम्र है। द्रौपदी देवी का हृदय पिघल गया, वो जानती नहीं थी कि ये कौन है। तुरंत उन्होंने वरदान दे दिया, वरदान दिया कि तुम्हें एक ऐसे बहुत शूरवीर पति मिले, तुम्हारा पुत्र भी बहुत शूरवीर हो। तो सुभद्रा देवी ने कहा जैसे आपकी इच्छा। और फिर सुभद्रा देवी ने अपनी पहचान की कि मैं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हूं। तब द्रौपदी देवी का हृदय तो पिघल ही गया था। तो द्रौपदी देवी देखा यहां गोपी के वेश में सुभद्रा है, कृष्ण की बहन है, तो तुरंत द्रौपदी देवी के मन में सुभद्रा देवी के प्रति बहुत तीव्र स्नेह उत्पन्न हो गया। द्रौपदी देवी सारे द्वेष को भूल गई क्योंकि कृष्ण अब बीच में आ गए थे, कृष्ण का संबंध था सुभद्रा के साथ। और फिर आलिंगन किया द्रौपदी देवी ने सुभद्रा देवी को, और बार बार कृष्ण और द्वारका के बारे में पूछती रही। अनेक घंटों तक द्रौपदी और सुभद्रा वहां बैठी रही कृष्ण कथा करते करते। और इसके बाद व्यासदेव जी कहते हैं कि दोनों बहुत घनिष्ठ सहेलियां बन गई, दोनों के बीच में संबंध बड़ा प्रेम का हो गया। और फिर आगे चल के द्रौपदी देवी ने कहा कि अब बहुत समय बीत चुका है, तो अब चलो मैं हमारी माता कुंती माता से पहचान करा देती हूं। फिर स्वयं द्रौपदी देवी गईं सुभद्रा देवी की पहचान कुंती माता से कराने के लिए। फिर कुंती माता भी बहुत प्रसन्न हो गईं। इस तरह से अर्जुन ने बड़े युक्ति से, बड़ी बुद्धिमत्ता से यह समस्या का समाधान कर दिया। अब सुभद्रा देवी, द्रौपदी देवी बड़े अच्छे से आपस में रहने लगे। अर्जुन लौट के आए थे, और इसके पीछे श्री कृष्ण की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, और यहां हस्तिनापुर आने के बाद भी कृष्ण का संबंध का महत्व क्या था वो हमने देखा है, और कल हम और आगे की लीलाओं के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। वैसे महाभारत की लीलाएं तो बहुत विशाल हैं, श्री कृष्ण की भूमिका और जो लीला है बहुत आगे आगे तक जाती हैं, परंतु कल एक दिन बचा है तो उनमें जितने भी लीलाओं का वर्णन संभव होगा हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब यहां पर समय निकालकर आए, आपके हम आभारी हैं। इतने ध्यान पूर्वक आपने इस कथा को सुना और हमारे हौसले को, हमारे उत्साह को बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कार्तिक मास की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।